नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार चौथी बार आम चुनाव में जीत हासिल की। छिटपुट हिंसा और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी तथा उसके सहयोगियों के चुनाव के बहिष्कार करने के कारण हसीना की पार्टी आवामी लीग के लिए जीत का रास्ता आसान हो गया। मीडिया की खबरों के अनुसार हसीना की पार्टी ने 300 सीट वाली संसद में 223 सीट हासिल की। एक उम्मीदवार के निधन के कारण 299 सीट पर चुनाव हुए थे। इस सीट पर मतदान बाद में होगा। संसद में मुख्य विपक्षी दल जातीय पार्टी को 11, बांग्लादेश कल्याण पार्टी को 1 और स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 62 सीट पर जीत दर्ज की। जातीय समाजतांत्रिक दल और वर्कर्स पार्टी ऑफ बांग्लादेश ने 1-1 सीट जीती। आवामी लीग पार्टी की प्रमुख 76 वर्षीय हसीना ने गोपालगंज तृतीय सीट पर भारी मतों के अंतर से जीत हासिल की। संसद सदस्य के रूप में यह उनका 8वां कार्यकाल है। हसीना 2009 से सत्ता पर काबिज हैं और एकतरफा चुनाव में लगातार चौथी बार जीत हासिल कर चुकी हैं। अहम बात यह है कि 1991 में लोकतंत्र की बहाली के बाद से ऐसा दूसरी बार है जब सबसे कम मतदान हुआ। फरवरी 1996 के विवादास्पद चुनावों में 26.5% मतदान हुआ था, जो कि बांग्लादेश के इतिहास में सबसे कम है। रविवार के चुनाव में दोपहर 3 बजे तक 27.15% मतदान हुआ था और शाम 4 बजे मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई। निर्वाचन आयोग ने 1 घंटे में 13% की वृद्धि के साथ कुल मिलाकर लगभग 40% मतदान का अनुमान जताया। इस जीत के साथ हसीना आजादी के बाद बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाली प्रधानमंत्री बनने की ओर बढ़ रही हैं। गोल्डन ग्लोब फैशन समारोह में हॉलीवुड अभिनेताओं ने रेड कार्पेट पर जलवे बिखेरे। टेलर स्विफ्ट हरे रंग के खूबसूरत परिधान में सबसे अलग नजर आईं। इसके अलावा मार्गोट रॉबी बाबी के अवतार में रेड कार्पेट पर उतरी, जिसे देखकर सभी की निगाहें उन पर ही टिक गईं। कोलमैन डोमिंगो समारोह में पिन से सजे हुए नेहरू टॉक्सिडो में नजर आए और उन्होंने रस्टिन फिल्म में जिस व्यक्ति का किरदार निभाया था उन्हें सम्मानित किया। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून की अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन काले रंग का ओवरकोट पहने नजर आईं। नए नए फैशन आजमाने वाले टिमोथी चॉलमेट काले रंग की पैंट, कम बटन वाली काली कमीज पर चमकदार काली जैकेट पहने दिखे। इस समारोह में बाबी फिल्म के निर्माता और इसकी अभिनेत्री रॉबी का परिधान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। गुलाबी रंग के अरमानी गाउन के साथ बाबी के अवतार में नजर आईं, जो कि 1977 की सुपरस्टार बाबी पर आधारित था। इसके साथ ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 का आगाज हो चुका है और विजेताओं की सूची जारी कर दी गई है। क्रिस्टोफर नोलन को ओपनहाइमर के लिए सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार मिला। द होल्डओवर्स फिल्म के लिए डेविन जॉय रैंडोल्फ को सर्वश्रेष्ठ सहयोगी अभिनेत्री और इसी श्रेणी में ओपनहाइमर के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर सहयोगी सर्वश्रेष्ठ सहयोगी अभिनेता का पुरस्कार मिला। द बॉय एंड द हेरॉन को सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म, एनाटॉमी ऑफ अ फॉल को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी और इसी फिल्म के खातिर जस्टिन ट्राइट आर्थर हरारी को सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए पुरस्कार मिला। इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इसराइल में एक हवाई यातायात नियंत्रण अड्डे पर हमला किया और इसके साथ ही इजरायली सेना ने ईरान समर्थित चरमपंथी समूह के साथ एक और युद्ध शुरू होने की चेतावनी दी। लेबनान के साथ लगती सीमा पर लड़ाई ऐसे वक्त में बढ़ गई है जब इसराइल गाजा में हमास चरमपंथियों से लोहा ले रहा है। इस स्थिति को देखते हुए अमेरिका द्वारा तत्काल कूटनीतिक कदम उठाए जाने की आवश्यकता बढ़ गई है, और वो भी ऐसे वक्त में जब विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पश्चिम एशिया की अपनी यात्रा पर इसराइल आने की तैयारी कर रहे हैं। ब्लिंकन ने कतर में वार्ता के बाद संवाददाताओं से कहा, यह ऐसा संघर्ष है जो आसानी से बढ़ सकता है, जिससे और अधिक असुरक्षा और पीड़ा पैदा हो सकती है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीमा पार लड़ाई ने क्षेत्रीय संघर्ष रोकने के अमेरिका के प्रयास को जटिल बना दिया है। इजरायली सेना ने बताया कि हिजबुल्लाह ने शनिवार को माउंट मेरोन पर एक संवेदनशील हवाई यातायात नियंत्रण अड्डे पर हमला किया, लेकिन हवाई रक्षा प्रणालियों पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने बताया कि कोई भी सैनिक घायल नहीं हुआ और सभी क्षतिग्रस्त चीजों की मरम्मत की जाएगी। गाजा में इजराइल के युद्ध के बीच यह हिजबुल्ला की ओर से सबसे गंभीर हमलों में से एक है। हिजबुल्ला ने अपने रॉकेट हमले को पिछले सप्ताह बेरूत में उसके गढ़ में एक शीर्ष हमास नेता की लक्षित हत्या की प्रारंभिक प्रतिक्रिया बताया। ऐसा माना जाता है कि हमास नेता की हत्या इसराइल ने कराई। इसराइल सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट कर्नल हर्जी हालेवी ने बताया कि हमास के सहयोगी हिजबुल्लाह पर सैन्य दबाव बढ़ रहा है और या तो ये प्रभावी होगा या हम एक और युद्ध की ओर बढ़ेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसी जानकारी है कि पेंटागन प्रमुख के गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में भर्ती होने की बात को राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी कई दिनों तक छिपाकर रखा गया। ऑस्टिन के वॉल्टर रीड आर्मी मेडिकल सेंटर में भर्ती होने का खुलासा करने में पेंटागन की नाकामी उनकी बीमारी को लेकर पारदर्शिता की कमी को दर्शाती है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा संकट से जूझने के वक्त इस तरह की गोपनीयता राष्ट्रपति तथा अमेरिका के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कैबिनेट सदस्यों के साथ सामान्य व्यवहार के विपरीत है। एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने कहा कि उपरक्षा मंत्री कैथलीन हिक्स को बृहस्पतिवार तक ये जानकारी नहीं दी गई थी कि ऑस्टिन 1 जनवरी से अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना मिलने के बाद हिक्स ने कांग्रेस को बयान भेजने और वॉशिंगटन लौटने की योजना बनानी शुरू कर दी। हिक्स छुट्टी लेकर प्यूर्तो रिको गई थी। अधिकारियों ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि बाइडेन को भी ऑस्टिन के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी नहीं दी गई थी। उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने बृहस्पतिवार को उन्हें इसकी जानकारी दी। शनिवार शाम को जारी किए गए एक बयान में ऑस्टिन ने सूचना देने में देरी की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि मैं जनता को उचित तरीके से सूचित करने का बेहतर काम कर सकता हूं, लेकिन ये बताना जरूरी है कि ये मेरी चिकित्सकीय प्रक्रिया थी और मैं इसका खुलासा न करने को लेकर अपने फैसले की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।